अब आगे एक और नबी का जिहाद है कबीर, कौन? हजरत हूद अलैहि सलाम। रुको नंबर 7, 123 से 140। कस्सबतादुल मुरसलीन, आदियों ने भी रसूलों को झुठलाया। आप देख रहे हैं ना, झुठलाना झुठलाना इंसानों की आदत होती है। कब झुठलाया? जबकि इनसे इनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत भी तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के पास है। और क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो और सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम यहाँ हमेशा रहोगे? हम भी जरा बड़े बड़े घरों को बनाते वक्त नजर में रखें आयत, क्या हमेशा इन घरों में रहना है? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो, अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, इससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो, इसने तुम्हारी मदद की माल और औलाद से, बागात और चश्मों से, मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। यह है बखा दर्द। उन्होंने कहा, क्या अपवास कहें या अपवास कहने वालों में ना हो, हम पर यकसा है। ठिठाई, कहते थे जो मर्जी बोलो, बच्चे भी कभी गुस्से में कहते बोलती रहे फिर आप, मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल अंदाज देखिए, खुद गुस्सा दिलाने वाला अंदाज है। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है और हम हरगिज अजाब नहीं दिए जाएंगे। चूंकि आदियों ने हजरत हूद को झुठलाया, इसलिए हमने इन्हें तबाह हो बर्बाद कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है और इनमें से अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही गालिब मेहरबान है, यानी अल्लाह की दोनों सिफात साथ साथ आ रही हैं, पकड़ने की भी और छोड़ने की भी। एक आयत है इसमें ईमान वाली, 139 शोरा, नेमते हिदायत सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह मुझे भी और आपको भी हिदायत दे दे। फेथ इन एक्शन क्या है? अपनी रिहाइश गाहों की सजावट पर बेजा वक्त माल एफर्ट स्किल्स नहीं लगानी, और शादी हालों की सजावट पे भी नहीं लगानी, शादी वैसे भी हो जाती है। आलीशान इमारतें आलीशान मुस्तकबिल की जमानत नहीं है, आमाल आलीशान करने हैं। आगे एक और कौम, रुकू नंबर 8, 141 से 159। हजरत सालेह की पुरखलूस दावत, सारे नबी आपको एक ही दर्द वाले नहीं दिख रहे? कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। इनके भाई सालेह ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो बस परवरदिगारे आलम पर ही है। क्या इन चीजों में से जो यहाँ है तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे, यानी इन बागों और इन चश्मों में और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नरमो नाजुक हैं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ मकानात बना रहे हो, बस अल्लाह से डरो और मेरी इतात करो, बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इतात से बाज आ जाओ। जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते, वो बोले बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया, तू तो हम ही जैसा इंसान है, अगर तू सच्चों से है तो कोई मुआवजा ले आ। आपने फरमाया, ये है ऊंटनी, यानी वो मुआवजा मांगा तो ले लो, पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुकर्रर दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी, यानी टर्न्स लोगे। खबरदार इसे बुराई से हाथ ना लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। फिर भी उन्होंने इसकी कूछें काट डाली, खुद मौजज़े मांगे, खुद ही उनको कबूल ना किया। आज हम नेकियों की दुआएं बड़ी करते हैं, अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम ले, और जब वो काम का वक्त आता है तो हम फंस जाते हैं। हम कहते हैं क्या फंस गए, बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं रोज आ सकते, नामुमकिन है, इतनी देर नहीं बैठा जा सकता। तो अल्लाह ताला ने ये वाकया हमारे सामने रखा। दुआ कीजिए कि अगर अल्लाह हमारी जिंदगी में कोई खैर का नेकी का मौका आए तो हम उस पर खुशी से लब्बाई कहें और फिर जमे भी रहें। क्या हुआ? बस वो पशेमान हो गए और अजाब ने इन्हें आ दबोचा। बेशक इसमें इबरत है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन ना थे, और बेशक आपका रब बड़ा जबरदस्त और मेहरबान है। एक आयत है ईमान से मुतल्लिक, 158 शोरा, बुराई को ना रोकने वाले बिल आखिर उसी बुराई की जद में आ जाते हैं। जैसे आपके हमसाए में आग लगी और आप फायर ब्रिगेड को कॉल ना करें तो थोड़ी देर में वो आग आपके घर में आएगी। यही है जिहादन कबीरा। ये जो बाहर की गंदगी है ना, आज आपको गैरों में दिख रही है, ये अगले 8-10 साल में उम्मत मुस्लिमा में आ जाएंगी। आज हम हाय हुए करते हैं, बाद में हम कहेंगे इट्स ओके। शुरू में एक्सपेक्टेड होता है कोई गुना कोई गलत चीज, बाद में एक्सेप्टेड हो जाता है। पहले उम्मीद होती है, बाद में हम उसको कबूल करते हैं। अल्लाह ऐसे रवैये से हमें बचाए। फेथ इन एक्शन, अपनी सलाहियतों को और हुनर को अल्लाह के रास्ते में लगाना है। नेमतों के सही इस्तेमाल से दुनिया और आखिरत में फायदा हासिल करना है। और आगे एक और कौम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पुरसोस दावत, रुकू नंबर 9, 167-175, कज़बत कौम लूतिल मुरसलीन। ये किस्से भी अपनी औलादों को आज सुनाने के हैं, क्योंकि फिर ही उनको पता चलेगा कि ये हक नहीं है, ये ना हक है, और ये फितरा नहीं है, ये आउट ऑफ फितरा है। कौमे लूत ने भी नबियों को झुटलाया। इनसे इनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला भी नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहान का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो? और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है उनको छोड़ देते हो? तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले। उन्होंने जवाब दिया, ये हद से गुजर जाने वाले लफ्ज को हाईलाइट कर ले, ट्रांसग्रेसर्स। उन्होंने जवाब दिया, कहलूत अगर तू बस ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा, यानी तेरी डेपुटेशन हो जाएगी। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूं, मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने को इस बवाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने इससे और इसके मुतल्लकीन सबको बचा लिया सिवाय एक बुढ़िया के, वो पीछे रहने वालों में हो गई, यानी उनकी बीवी। फिर हमने बाकी और सबको हलाक कर दिया और हमने इन पर खास किस्म का मीह बरसाया, बस बहुत ही बुरा मीह था जो वो डराए गए हुए लोगों पर बरसा, यानी ये पत्थरों की बारिश, स्टोनिंग रेन। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है गलबे वाला मेहरबानी वाला। अल्लाह हमारी नस्लों को इस्लाम पे रखना। एक आयत है ईमान से मुतल्लिक, 174 शोरा, फहाशी के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी आज का जिहाद है। फेथ इन एक्शन, हर किस्म के गैर फितरी और गैर शरई ताल्लुक से दूर रहना है। ताल्लुकात में हया और पाकीजगी अपनानी है। और अब आगे आखिर में हजरत शुएब की कौम का तस्करा, 176-191, रुकू नंबर 10, कज़्ज़ब अस्हाब वलई कतिल मुरसलीन। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खैर ख्वाखाना दावत। एका वालों ने, एका जंगल को कहते हैं बन, अमेजोन कह लीजिए, एका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया, जबकि इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें डर खौफ नहीं? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमा बरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत भी नहीं चाहता, मेरा अजर तो तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। नाप पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत ना करो और सीधी तराजू से तोला करो। लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दो और बेबाकी के साथ जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। सोचिए जरा, यानी जो बेबाकी की जाती है उससे रोका जा रहा है, और इससे पता चलता है ये एक ऐसा जुर्म है, ये एक ऐसा गुना है कि जिसके करने वाले की जो झिझक है ना वो खत्म हो जाती है। ये नोट करिए, ये कल भी था, ये आज भी है और ये कयामत तक रहेगा मामला, कि लोग किस तरीके से जुबान खोल खोल कर गैर फितरी चीज की हिमायत करते हुए दिखते हैं और हम फितरत की बात पे खड़ा होने की जरूरत नहीं रखते। और इसी तरह से आप देखिए कि हजरत शुएब की कौम जो थी उनके अंदर माली प्रॉब्लम्स थे। माल का एक ऐसा फितना है कि इसके दिफा के लिए तो लोग बेहतरीन वकील बन जाते हैं। सुनिएगा, ना पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत ना करो और सीधी तराजू से तोला करो। लोगों को इनकी चीजें कमी से ना दो, बेबाकी के साथ जमीन में फसाद न मचाते फिरो। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है, यानी तू तो हिप्नोटाइज कर दिया गया, तुम्हारा तो पता नहीं क्या हाल हुआ, ब्रेन वॉशिंग कर दी गई, और तू तो हम जैसा एक इंसान है और हम तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं। देखिए कितने ताने मिल रहे हैं जिहादे कबीर करने वालों को। हमें अगर चार लफ्ज कोई बोल देता है तो हम क्यों इतना रोने लगते हैं? अगर तू सच्चे लोगों में से तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। इससे बड़े ना समझ भी कोई होंगे। कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो, चूंकि उन्होंने उसे झुटलाया तो इन्हें साहिबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था और यकीनन इसमें बड़ी निशानी है, और इनमें से अक्सर मुसलमान न थे, और यकीनन तेरा परवरदिगार वही है अलबत्ता गलबे वाला और मेहरबानी वाला। आप देखिए कि दो सिफात एक साथ अल्लाह ताला की इनायात में आप मुस्तकिल पढ़ रहे हैं, क्या पता चला कि अल्लाह की पकड़ आ गई। ईमान से मुतल्लिक एक आयत है इस हिस्से में, 190 शोरा, गैर मुख्तात रवैया हो तो दौलत की ज्यादती निफाक का जरिया बन जाती है, और अगर मुख्तात रवैया हो तो यही दौलत जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती है। फेथ इन एक्शन, मामलात में हर तरह की नाइंसाफी से बचना, अपने फराइज की अदायगी में किसी की हक तलफी नहीं करनी। और अब आगे आखिर में सारे अंबिया के किस्सों के बाद साबिका आसमानी किताबें कुरान की अजमत पर दलील हैं। इस मौजू पे है रुकू नंबर 11, 192 से 227, व इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन। और बेशक को शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है, इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है, आपके दिल पर उतरा है, ये कुरान की तारीफ है। उलमा यहीं से लेते हैं अमूमन। क्या आप आगाह कर देने वालों में से हो जाएं, साफ अरबी जुबान में है, अगले नबियों की किताबों में कुरान का तذکرہ है, क्या इन्हें ये निशानी काफी नहीं कि हक्कानियत यानी सच्चाई, कुरान की सच्चाई को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं, और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते, बस वो इनके सामने इसकी तिलावत करता, तो ये इसे बावर करने वाले ना होते। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिल में इस इनकार को दाखिल कर दिया है, वो जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाहजा ना कर ले ईमान न लाएंगे, बस वो अजाब इनको अचानक आ जाएगा, इन्हें इसका शऊर भी ना होगा। आज भी डरना चाहिए कि किसी वक्त भी अल्लाह की पकड़ दुनिया के किसी हिस्से पे आ सकती है। इस वक्त कहेंगे क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी, बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। अच्छा ये भी बताओ कि अगर हम इन्हें कई साल भी फायदा उठाने देते तो, यानी अगर और भी कुछ साल जी लेंगे तो फिर भी होना तो यही है, फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिससे ये धमकाए जाते थे, तो जो कुछ भी ये बरतते रहे इसमें से कुछ भी फायदा ना पहुंचा सकेगा, यानी आपके कहने से इनको फायदा नहीं होगा। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इस हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। अब ये जो अल्लाह के नबी पे इल्जाम था कि आपके पास शैतान आता है और गारे हिरा में आपके ऊपर ये कुरान उतारता है, यानी जिब्राइल को नाउज बिला वो शैतान कहते थे, तो उसका तोड़ देखिए। इस कुरान को शैतान नहीं लाए, ना वो इस काबिल है, ना इन्हें इसकी ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए गए हैं। बस तो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकार कि तू भी सजा पाने वालों में से हो जाए। ये आयत नोट कर लीजिए, करीबी रिश्तेदारों का हक होता है कि उनको सबसे पहले वॉर्न किया जाए। वन ज़रशीरतकलकरबीन, 214 सूरत शोरा, अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए। इसके बाद क्या किया अल्लाह के नबी ने? नहीं नहीं वो नहीं मानते, वो नहीं सुनेंगे, रहने दो मैं क्यों बुरा बनूं। नहीं, आपने कोहे सफा पे सबको जमा किया, और वो मशहूर वाक्य सीरत का जो आपने सुना है वो इस आयत के बाद का वाक्य है। क्या करो, उसके साथ नरमी से पेश आओ जो भी मन लाने वाला हो कि तेरी ताबेदारी करे, यानी प्यार से बात कीजिए। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो तू ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूं जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रख, जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब ही जानने वाला है। अब सूरत का नाम शोरा है तो उसकी वजह देखिए, जरा कुछ शेर व शायरी पे बात होने लगी है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं, यानी इस नबी पर तो नहीं उतरते, तो किस पे उतरते हैं? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, उचटती हुई सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे हैं। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बियाबान में सब टकराते फिरते हैं, और वो कहते हैं जो करते नहीं, और कर भी नहीं सकते। मसलन तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊं, तेरे लिए दूध की नहरें खोदूं। शायरी और गानों के जरा कुछ बोल जहन में लाकर इस आयत को सुन लीजिए। वो बातें कहते हैं जो कर नहीं सकते, सिवाय इनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए हसान बिन साबित की तरह। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ये उनकी तारीफ है। और बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया। जिन्होंने जुल्म किया है वो भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। तीन आयात ईमान से मुतल्लिक, शुरा 201 ईमान का इनकार करने वालों से अल्लाह तस्लीम की तौफीक छीन लेता है, यानी फिर मानने की तौफीक ही नहीं रहती। अल्लाह हमें ऐसे वक्त पे आने से बचाए। शुरा 215 रहम करने वाले रब के नुमाइंदे लोगों से रहमत और शफकत से पेश आते हैं, डंडे नहीं बरसाते तबलीग के नाम पे उन पर। शुरा 227 मोमिन जुल्म के मुताबिक इंतकाम ले सकता है, यानी मोमिन को बेवकूफ नहीं होता। फेथ इन एक्शन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। निस्बतों और रिश्तेदारियों पर इन्हिसार की बजाय आमाल की इसलाह करनी है। और शायरी अगर ईमान और हक के साथ हो तो पसंदीदा है, और अगर फेक और गंदी बेहुदा शिर्क और बिदत से भरी शायरी हो तो उसको नहीं सुनना। तो खूबसूरत से पैगाम पे सूरत शुरा पूरी हुई। अब आगे सूरत नमल चुंटी को कहते हैं। पहले पीछे आपने शायद की मक्खी का तस्करा सुना, आप चुंटी के सुनिए। और तरतीब में 27 सूरह है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 26 सूरतें पढ़ ली जो बड़ी बड़ी थी। अब तो आगे छोटी छोटी सूरतें आती जाएंगी दिन ब दिन। 1 से 59, यानी 59 आयतें हैं इस बारे में सूरत नमल की। ये भी एक स्टोरी है, आप सब बड़ा इंजॉय करेंगे। औरतों को ऐसी स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं जो इस सूरत में आने वाली हैं। कौन? मलका सबा। वो बचपन में भी हम सुनते थे ना, बादशाह और मलका की कहानी, और कुछ इसी किस्म की अमल वाली बहुत सारी बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 14, ईमान बिलाखिरा की अहमियत, यानी आखिरत पर जब ईमान होता है तो एक नई शख्सियत डिवेलप होती है। तौसीन, तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिन मुबीन। तौसीन, ये आयतें हैं कुरान की, यानी वाजे और रोशन किताब की, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए। कौन होते हैं वो? अब यहाँ आप नंबर नोट कर ले, क्या क्या खूबियां ईमान वालों में। जो नमाज कायम करते हैं और जकात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग क्यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत जीनतदार कर दिखाए हैं, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता हैं। बेशक आपको अल्लाह हकीम व आलिम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। खुश हैं आप इस कुरान पे सीखने पे? अल्लाह की तरफ से आपके मेरे नाम जी खत है। अब आगे मूसा का किस्सा, तरतीब से आप देखेंगे बड़ा दिलचस्प अंदाज है। याद होगा जबकि मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम सेक ताप लो। मूसा एक जिम्मेदार शौहर और बाप के रूप में जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया जो इसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा सुनिए, बात ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ ग़ालिब व हिकमत। क्या मूसा के दिल पे गुजरी होगी इस जुमले को सुन के? तो अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब इसे हिलता जुलता देखा इस तरह गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर पलट कर देखा भी नहीं, यानी पीठ फेर कर भागे और पलट कर देखा भी ना, क्योंकि इंसान थे, सांप को देखकर कोई बैठा तो नहीं रहेगा वहां। ए मूसा, खौफ न खा, मेरे हजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर इसके बस नेकी करें, और इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तू 9 निशानियां लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मोजज़े पहुंचे तो कहने लगे ये तो सरीख जादू है। हकीकत का इनकार, उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे। इसको नोट कीजिए, स्टबन होता है ना बंदा तो कहते मैं ना मानू, मान के भी ना मानू, सिर्फ जुल्म और तकबर की बिना पे। ऐसे ही लोग सिर्फ ये करते हैं। बस देख लीजिए कि इन फितना फैलाने वाले लोगों का अंजाम कैसा हुआ। तो दो आयात ईमान से मुतल्लिक, नंबर टू, हिदायत वही पाता है जो हिदायत का तलबगार हो। आप दूध लेने जाएंगे तो स्टोर से दूध लेकर आएंगे ना, आप दूध लेने ही नहीं गए तो आप दूध क्यों लाएंगे, बस यही मिसाल है। नंबर फोर, बुराइयों का अच्छा लगना गुनाहों का बवाल होता है। सोचिए, खुद से पूछिए, मुझे बुराइयां अच्छी तो नहीं लगती। फेथ इन एक्शन, जिंदगी के हर मामले में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेनी है, बामल मुसलमान बनकर कुरान की बशारतों को पाना है, अपनी इस्तेआत के मुताबिक दावत हक देते ही रहना है, और अल्लाह जिंदगी के आखिरी दिन तक ये काम हमसे ले। रुकू नंबर दो, 15 से 31, हजरत सुलेमान पर अल्लाह का फजल। पिछले अंबिया के जो किस्से पढ़े ना, अभी उससे बिल्कुल यूनिक किस्सा है। हजरत सुलेमान और दाऊद वो थे जिस दौर में अरूज था, यानी ये दो सिंबल हैं कि अल्लाह दीन के साथ अगर बीमारियां परेशानियां और दुख गम देता है ना, तो दीन के साथ दौलत भी दे सकता है, अरूज और गलबा और इख्तियार भी दे सकता है। 15 से 31, सुलेमान पर अल्लाह का फजल। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, देखिए दौलत वाले थे, लेकिन अल्लाह सबसे पहले किस दौलत का तذکرہ करते हैं, इल्म की दौलत का। और यकीनन हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं, बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है। सुलेमान के सामने इनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंदों में से जमा किए गए, हर हर किस्म अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई उसकी। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे, अब यहाँ से चींटी भी की कहानी सुनिए, एंट्स क्या कहा। एक चींटी ने कहा है, चींटियों अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। इस बात से हजरत सुलेमान मुस्कुराकर हंस दिए, आप भी हंसते, और दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। बड़े प्यार से सारी नेमतों को जहन में रखें और सोचें, और मैं भी इस वक्त खास एक नेमत का सोच कर ये दुआ मांगूंगी, रब्बी औज़ेन या नशकुरा नेमत कल्लती अनमत अलैहा वाला वालिदैय व नअमल सालिहन तरदाहू वदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहिन। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं खुद खुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है, यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे जिबा कर डालूंगा या मेरे सामने को खुली दलील बयान करे। कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आकर इसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे इसकी खबर ही नहीं है, मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ, यानी झूठी खबरें नहीं देता मेरा चैनल। मैंने देखा कि इनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज में से कुछ न कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। देखिए जानवर परिंदे फितरत में है ना, तो उनको हैरत हो रही है शिर्क को देखकर, इंसान को भी अल्लाह करे हो जाए। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखाकर सही रास्ते रोक दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह के लिए सजदे करें जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अजमत वाले अर्श का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठा है। आपके लिए अमल का नुक्ता है, कोई भी कोई बात करे तो आपके ठहर जो, पहले मैं तहकीक करती हूँ। मेरे इस खत को ले जाकर इन्हें दे दे और फिर इनके पास से हट जा और देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी है, सरदारो मेरी तरफ एक बाबुकत खत डाला गया है, यानी बड़ा ऑनरेबल खत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। बार बार इस बारे में मुसलमान का लफ्ज आया है। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, नमल 15, इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी अता है, अल्लाह में ये नेमत अता करे। बुखारी की रिवायत है, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करे उसको समझ देता है। फेथ इन एक्शन, जिंदगी के हर दौर में इल्म हासिल करने के लिए वक्त निकालना, अपनी इस्तेआत के मुताबिक दावते हक देते रहना। अब किस्सा है मलका सबा का, रुकू नंबर 3 में कहानी आगे बढ़ती है, 32 से 44। कालत या युहल मलाऊ अफ्तूनी फी अमरी, उसने कहा है मेरे सरदारो तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। अक्लमंद थी मलका। अभी आप देखेंगे कि फिरौन के पास मूसा खुद गए वो ना माना, और मलका के पास खुद खुद गया और यही मान लिया। ये फर्क होता है, उसके दिल में तकबर था, इसके दिल में तकबर नहीं था, और मशवरे से काम करती थी, ये इसकी अकलमंदी है। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। यानी अपनी राय भी दे दी और मलका से पूछ भी लिया। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो इसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। आजमा रही थी कि हजरत सुलेमान लालची हैं कि नहीं। बस जब कासिद हजरत सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है। अल्लाह आज भी दीनदारों को भी और दुनियादारों को भी इतना खुददार कर दे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने काम करो, बस तुम अपने ही तोहफे से खुद खुश रहो, यानी तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक। जा इनकी तरफ वापस लौट जा, हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलील और पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। देखिए जो किसी से लेता है ना वो फिर दबता, कहते ना लेने वाला हाथ हमेशा नीचे ही होता है, तो देने वाला हाथ बने लेने वाला नहीं। आपने फरमाया, सरदारो तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे? एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही पहल मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं और हूं भी अमानतदार। आपको कोई कि आपका बेडरूम अभी इधर आ जाता, आपका बेड इधर आ जाता है तो आप तो खौफ से भाग जाएंगी। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, क्या पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, कोई बड़के नहीं मारी, कोई शो नहीं मारी, हाँ मैं बहुत करने वाला हूँ ना। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों के बारे में कहते हैं ये बड़े पहुंचे हैं, ये करनी वाले, नबी कह रहे हैं करनी वाला तो सिर्फ रब है। क्यों दिया उसने मुझे ये नेमत, क्यों दी ये फजल, क्यों दिया? ताकि वो मुझे आजमाए। हर नेमत इम्तिहान का पर्चा है, कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या ना शुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो ना शुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और बुजुर्ग गनी और करीम है। हुक्म दिया गया कि इस तख्त में कुछ फेर बदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि राह पा लेती है या इनमें से हो जाती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इससे कहा, क्या कहा गया? कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। इसने जवाब दिया, ये गोया वही है। औरत थी ना, औरतें अपनी चीजें पहचान लेती हैं, ये मेरा बर्तन है, ये मेरी चम्मच है, तेरा भी ऐसा ही तख्त है। कहने लगी, गोया ये वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। इम्प्रेस हो गई हजरत सुलेमान के इस मोजे से। इसी से उलमा कहते हैं कि दीनदारों को दीन का रूज दिखाना चाहिए, अपनी जात के लिए पहनना ओढ़ना, अपनी जात के लिए जगहों को अच्छा बनाना, साफ सुथरा रखना नहीं, ताकि नए लोगों को दिखाया जाए कि दीन भी इस काबिल है कि आप उसके लिए एहतमाम करें। मलका बादशाह की इस बात से इम्प्रेस हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती थी, यानी अल्लाह के सिवा जिनकी वो परस्तिश करती थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझ करके ये हौस है, इसने अपनी पिंडलियां खोल दी, यानी कपड़ा हटा लिया। हमारी औरतों की तो वैसे ही खुली रहती है पिंडलियां, अल्लाह रहम कर दे, नमाजें भी कबूल नहीं होती खुली पिंडलियों के साथ। फरमाया, ये तो शीशे से मढ़ी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमा बरदार बनती हूँ। दैट्स इट, हो गई मुसलमान। फेथ इन एक्शन, इज्तमाई कामों को साथियों के मशवरे से करना चाहिए। हक सामने आ जाए तो फौरन तस्लीम कर लेना चाहिए, खुदा प्रस्ती और आजजी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो गोया के मलका मुसलमान हो गई। हमारे यहाँ फिक्शन में शादियों की बड़ी बात करते हैं ना, अजीज मिस्र की बीवी और यूसुफ की शादी का कहीं तस्करा है, और ना मलका सबा और हजरत सुलेमान की। पता नहीं हमारा देसी कल्चर शादी पे जाके क्यों रुकता है। अल्लाह में हिदायत दे दे। अब आगे पारे कैंट की तरफ, कौम समूद की बदबख्ती, 45 से 58, रुकू नंबर 4। वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम सालिहा, यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालिक को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया, मेरी कौम के लोगो, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह ताला से इस्तग़फार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे, हम तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा कर अहद किया कि रात ही को सालेह और इसके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और इसके वारिसों से साफ कह देंगे, हम इसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद ना थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने मकर यानी खुफिया तदबीर की और हमने भी, और वो इसे समझते भी ना थे। अब देख ले कि इनके मकर का अंजाम कैसा कुछ हुआ कि हमने इनको और इनकी कौम को सबको गारत कर दिया। ये हैं इनके मकानात जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। घर रह गए, लोग चले गए, आज भी यही हो रहा है। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। और लूत का जिक्र कीजिए, जबकि इसने अपनी कौम से कहा, क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? बार बार अल्लाह इसका जिक्र करे, क्योंकि अल्लाह को बताने वाली दुनिया ने इसी फितने में हमारी नस्लों को जकड़ना है। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक यह है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। कौम का जवाब इसके सिवा और कुछ न था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो। ये तो बड़े पाकबाज बन रहे हैं। बस हमने इसे और इसके अहल को सिवाय इसकी बीवी के सबको बचा लिया। इसका अंदाजा तो बाकी रह जाने वालों में से हम लगा ही चुके हैं और इन पर एक खास किस्म की बारिश बरसा दी। बस इन धमकाए हुए लोगों पर बड़ी बुरी बारिश हुई। अल्लाह अकबर। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 53 नमल, तकवा रुसवाइयों से बचा लेता है। फेथ इन एक्शन, मुआशरे में बुराइयां देखकर खामोश नहीं रहना, जिहादे कबीर करना है, कुरान के जरिए आवाज बुलंद करनी है, यू शुड रेज द वॉइस। दावते हक का आगाज अल्लाह की हमदो सना से और सलाम से करना है। और अब आखिरी एक आयत पारे की, 59, इबादत का मुस्तहक सिर्फ अल्लाह है। इस आयत का हुस्न देखिएगा आप, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى। तो कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, इसके बरगजीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? बड़ी प्यारी ये आयत है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। कितने अजाबों की बात के बाद ये आयत आई है। इसलिए ईमान की शाखों में से आज हमारा अमल गुनाहों से बचना वाजिब है। इतनी कौमों के गुनाह सुनकर तो अब दिल भी चाहता है कि हम भी गुनाहों से बच जाएं। जिना से बचना है, इज्जत और एहतराम वाली जिंदगी मिलेगी। वला तकरबुस जिना इन्नहु काना फाहिशा, सूरत बनी इसराइल 32 में अल्लाह ने जिना को फुहश बात कहा, उससे दूर रहने की बात की। और जो जिना से बचता है उसके लिए खुशखबरी है, बुखारी की रवायत 64 74 में, कि जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपनी जुबान की हिफाजत करे, अल्लाह उसको जन्नत की जमानत देता है। हद जिना हमने पढ़ी सूरत नूर में, इसकी शरायत है, आखरत में अजाब भी होगा अगर दुनिया में ना पकड़ हुई और तौबा ना की। और फिर अगली शाख इसी से मुतल्लिक एक और गुना, 38 नंबर है, ना हक यानी हराम माल खाना, इससे रुकना पड़ेगा। हराम कमाई से बचना है। कौन से तरीके हैं हराम के? चोरी का माल हराम है, धोखा दही से कमाया हुआ हराम है, शराब और सूद की कमाई हराम है, रिश्वत का माल हराम है। आराफ 58 में हमने देखा कि वजन और पैमाने पूरे करने की बात थी, लोगों को घाटा ना दो, नाप तोल पूरा करना चाहिए। और पांच बुरी चीजों से बचने की अल्लाह के नबी ने दावत दी इब्ने माजा की रिवायत 4091 में। और उन चीजों में क्या चीज थी? बेहयाई, बदकारी, जब ऐलानिया होने लगे, आज हो रही है। ऐसी कौमों में ताउन और ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो गुजरे हुए लोगों में नहीं थी। दूसरी नसीहत आपने की, जब भी वो नाप तोल में कमी करते हैं, इनको कहत साली और रोजगार की तंगी और बादशाह के जुल्म के जरिए सजा दी जाती है, खुद ही देख लीजिए आज जो हो रहा है। तीसरी चीज, जब अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देते हैं तो इनसे आसमान की बारिश रोक ली जाती है, अगर जानवर ना हो तो कभी भी बारिश ना हो। चौथी, जब अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं तो इन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन मुसल्लत कर दिए जाते हैं, वो इनसे वो कुछ छीन लेते हैं जो इनके हाथ में होता है। और पांचवी चीज, जब भी इनके इमाम यानी सरदार लीडर अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते और जो अल्लाह ने इसे उतारा है उसे इख्तियार नहीं करते, तो अल्लाह ताला इनकी आपस में लड़ाई डाल देता है। सारी चीजें आज हो रही हैं। और आज के बारे में हमने जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा की बात पढ़ी थी, आइए जरा कुरान से मुतल्लिक कुछ अशआर पढ़ते हैं। हिंद में हिकमतें दी कोई कहाँ से सीखे, न कहीं लज्जते किरदार न इफकारे अमीक। चूंकि अलामा इकबाल ने हिंद में ये शेर लिखे थे, वो कहते हैं कि आज लोग हिकमत कहाँ से सीखें, क्योंकि जो दीनदार है ना उनके अपने किरदार दीन के मुताबिक नहीं है और ना उनके सोच में वो गहराई है। हल्का शौक में वो जुर्रत अंदेशा कहाँ, आह महकूमी और तकलीद और जवाले तहकीक। यानी आज के जो दीनदार हैं उनमें जुर्रत नहीं रही, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, वो महकूमी और तकलीद ही में खोए हुए हैं, 100 साल पुरानी चीजों पे लगे हुए। खुद बदलते नहीं कुरआन को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। ये तो सबको ही पता है, आज भी ये कहते हैं कुरान को चेंज करो, कुरान नहीं चेंज होगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। कोई मोटा हो जाए तो कपड़े खुले करता है, फिट टू ऑल नहीं है कुरान। आपका अगर गुनाहों से वजन बढ़ गया ना तो जरा सी डाइटिंग करें, स्लिम हो, गुनाहों को छोड़े, खुद बहुत कुरान में आप फिट हो जाएंगे। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब के, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक। इस कुरान को पढ़ने के बाद गुलाम जहन नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और दुआ आजजी की, कुरान की मोहब्बत की, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फिय्या हुक्मुक अदलुन फिय्या कदाउक अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक अव अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक अव अनज़ल्तहु फी किताबिक अव इस्तासरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक। अब आगे दिल से मांगिए, अंता जलल कुरआना रबी कल्बी बनूर सदरी वजला हुज्नी वजहाबा हम्मी सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।